Hare Krishna, this is a lecture by S.K.S. Sarvabhaum Prabhuji on Srimad Bhagavatam, 4th Canto 23, chapter, verse number 7 on 8th February
2007. किसी भी प्राण को प्राण कहने के लिए नव चीजों की आवश्यकता होती है। कोई प्राण उसको प्राण तब कहते हैं जब उसमें नव चीजें होती हैं। तो उसमें सर्ग विसर्ग पूर्ति ऐसे सब है, नव चीजों का नाम है। तो ये विसर्ग है। सर्ग का मतलब क्रिएशन, उत्पत्ति। विसर्ग विशेष उत्पत्ति। तो एक उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं और एक उत्पत्ति भगवान विष्णु करते हैं। तो भगवान विष्णु तो गर्भोदक्षा है, विष्णु उसकी नाभि से कमल निकलेगा, कमल और भगवान जब सोएंगे, करुण दक्षा है विष्णु, तो उसके रोम कोपों से जो एक एक विश्व निकलेगा वो पहली उत्पत्ति हुई। फिर हरेक गर्भोदक्षा के अंदर से ब्रह्मा निकलेगा तो ब्रह्मा और उत्पत्ति करेगा, वो दूसरी उत्पत्ति हुई, दूसरी सेकंड क्रिएशन हुई। तो ये विसर्ग चौथा स्कंद विसर्ग कहते हैं इसको। इसमें विसर्ग का वर्णन है जनरल। और अब जो प्रसंग चल रहा है ये पृथु महाराज का प्रसंग चल रहा है, पृथु महाराज का प्रसंग चल रहा है, ठीक है। पृथु महाराज चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का है ना वर्णन। तो ध्रुव के वंशज में पृथु महाराज आते हैं, ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं। कैसे पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई? ध्रुव के बाद दो ऐसे राजा उस वंश में हुआ है। एक बहुत बड़ा अच्छा था, भला आदमी, कौन सा? अंग। वो बड़ा भला मानस था, अच्छा राज किया। और उसके बाद आया वेन, और वेन बहुत बड़ा दुराचारी राजा था। तो राजा स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे वैदिक काल में, उसके ऊपर ब्राह्मणों का संतुलन हुआ करता था, जो ब्राह्मण उनका मार्गदर्शन करते थे। और कहते ठीक नहीं है तो हटा दो इसको। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये वेन जो है बहुत बड़ा उत्पात मचा रहा है, तो वेन को समाप्त कर दिया मंत्रों से। वेन के जाने के बाद ब्राह्मण राज के ऊपर बैठ के राज करने में उनको कोई आसक्ति नहीं होती थी कि भाई अब खाली हो गए जी हम बैठ जाएंगे, ये उनका भाव नहीं था। उन्होंने राजा तो चाहिए, तो राजा कहां देना है। तो वेन के शरीर का मंथन किया, भुजाओं के मंथन से पृथु की उत्पत्ति हुई। वेन के भुजाओं के मंथन से पृथु की उत्पत्ति हुई। और पृथु भगवान का अंश अवतार है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसमें भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश कर दिया कि भगवान की इच्छाओं के अनुसार वो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं धर्म की जब हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है तब मैं प्रकट होता हूं। तो वेन के समय में अधर्म बढ़ गया, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अपने शक्ति अवतार को भेजा पृथ्वी महाराज के रूप में। इसको ऐसे समझना सरल हो जाएगा। तो पृथ्वी महाराज की उत्पत्ति भुजाओं से हुई। श्रीधर महाराज ने एक टीका में ऐसे लिखा है, हमारे ध्यान में आता है कि हाथों से भगवान की पूजा होती है, इसलिए पृथ्वी महाराज अर्चन भक्ति के उदाहरण है। अर्चन भक्ति नवदा भक्ति में अर्चनम है, चरणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम स्मरणम वंदनम अर्चनम। तो अर्चन भक्ति के उदाहरण पृथु महाराज है। और शरण भक्ति के उदाहरण कौन है? सुनना परीक्षित, कीर्तनम सुखदेव महाराज। तो उसमें अर्चन भक्ति के उदाहरण है पृथु महाराज। और आखिरी आत्म निवेदन के उदाहरण है बलि महाराज, सब कुछ जो समर्पण कर दिया भगवान को। तो दूसरी बात पृथु महाराज के विषय में जो हमें हमेशा याद रखनी है वो अर्चन भक्ति के उदाहरण है। और पृथु महाराज के विषय में एक और बात जो हमको याद रखनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने भगवान की पूजा बहुत विधिवत की, और इतनी विधिवत की कि भगवान स्वयं प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु पृथु महाराज के यज्ञ स्थल के ऊपर प्रकट हुए। अर्चन भक्ति का उद्देश्य है कि भगवान का प्रकट्य होना चाहिए, जिसकी हम अर्चना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ठाकुर जी की अर्चना का मतलब भगवान की पूजा करना, तो पूजा करना जागती समाधि है। जो ठाकुर जी की रोज पूजा करते हैं वो जागती समाधि है, तो भगवान का प्रकट्य होना चाहिए। हमारी भक्ति भगवान को, भगवत प्रेम को प्रकट करना चाहिए उसको, उसका उद्देश्य ये है। हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका कुछ फल होना चाहिए, ना फल ये कि भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो पृथु महाराज के जीवन में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और इंद्र को साथ लाए, क्योंकि इंद्र ने पृथु महाराज के प्रति अपराध किया था, उसके यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था। इस पुस्तक के ऊपर जो बाहर चित्र है ना, ये बाहर का चित्र, इस भागवत के ऊपर बाहर का चित्र ये है ना, इसमें भगवान विष्णु गरुड़ से उतरे हैं और जो नीचे झुका हुआ है ये इंद्र है और पृथु महाराज के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। पृथु महाराज इंद्र को चरण स्पर्श करना नहीं दे रहे हैं, उसको उठा के गले लगा रहे हैं और सारा उसका दोष भूल गए। ये है भागवत की पहचान कि जिसने शत्रुता की उसको भी क्षमा कर देना। और आज के श्लोक का पहला शब्द है तितिक्ष्व। हालांकि ये तितिक्ष्व शब्द यहां दूसरे अर्थ में है, लेकिन तितिक्ष्व साधु का पहला गुण है। तितिक्ष्व है ना, तो साधु का पहला गुण तितिक्ष्व है। तो इंद्र ने जो आपका सबसे बड़ा आप काम करने जा रहे हो, मानो कि आपने फैक्ट्री लगाना शुरू की है, जो आदमी फैक्ट्री को आग लगा दे और वो आके आपके चरणों में गिर जाए तो आप क्या उसको गले लगाएंगे? तो यज्ञ का आखिरी 100 यज्ञ पूरे करने के पृथ्वी महाराज का घोड़ा ही चुरा लिया, फिर काम को रुकावट डाल दी, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए। भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा जो है पृथ्वी को शिक्षा दी है और जाना चाह रहे थे, जा नहीं जा पा रहे थे। भगवान पृथ्वी का प्रेम देख के वहां से जाने को तैयार नहीं थे और पृथ्वी की आंखों में इतने आंसू धारा बह रही थी कि वो भगवान को देख नहीं पा रहे थे, दिली दिल में आलिंगन कर रहे थे। अच्छा, भगवान प्राप्ति के बाद भी बड़ा आश्चर्य देखिएगा, भगवान विष्णु के दर्शन तो हो गए पृथ्वी को, पृथ्वी महाराज ने बहुत अच्छा राजन अपना राज्यकाल में शासन किया और पृथ्वी सब चीजें उनको देने लगी, पृथ्वी को पुत्री के समान उन्होंने स्वीकार किया अपने जीवन में और पृथ्वी जो रस चाहिए वो पृथ्वी महाराज के समय में देने को तैयार हो गई। भगवत प्राप्ति भी हुई, भगवत दर्शन हुए, लेकिन फिर भी पृथ्वी महाराज कि राजकाल की शिक्षा का एक अंग था कि सारी उम्र राज तो नहीं करना, एक दिन तो जाना ही है यहां से, तो जाने की तैयारी कैसे की जाए? उसके लिए भगवान के महान भक्त सनक सनत्स आदि कुमार पधारे, तो भगवान के बाद भक्त आए। एक हम ब्रह्मांड प्रमित कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता दी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तब भगवान, तब कोई साधु संत मिलता है। तो विष्णु कृपा हुई तो फिर इनको सनकादि भक्तों का संग हुआ। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके घर में सनकादि ऋषि पधारे और उन्होंने उपदेश किया और उपदेश से वो राजकाल के सारे झंझट से मुक्त हो गए। और फिर पृथ्वी महाराज ने अपनी पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट लिया और स्वयं तपस्या करने के लिए घर से निकले। तो घर का आदमी संसार का जो ग्रस्त का काम पूरा करके, अपना धन धंधा कारोबार पूरा करके मानव जन्म की सफलता के लिए आगे कब बढ़ता है? जब साधु का संग होता है। जब साधु का संग होता है तब उसको भगवत प्राप्ति की लालसा जागती है और संसार से वृत्ति होती है। आसक्ति भगवान के होती है तो वृत्ति संसार से होती है, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही समय पर होते हैं। तो कुमारों के कृपा से, उनके उपदेश से पृथ्वी महाराज के जीवन में ये अंतिम जो लक्ष्य है जीवन का, उसकी प्राप्ति की लालसा जागी और राजपाट को देके पृथ्वी महाराज वन में चले गए। वानप्रस्थ का बहुत सुंदर उदाहरण, अपनी वो अर्चन भक्ति के प्रमाण है। तो उनकी पत्नी का नाम अर्ची है, पृथ्वी की पत्नी अर्ची है, तो अर्ची माता भी उनके पीछे साथ चली। वानप्रस्थ में स्त्री पुरुष दोनों साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के सहयोग से भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे चलते हैं, तो पृथ्वी महाराज तप के लिए वन में प्रवेश कर रहे हैं और तप कर रहे हैं, घोर तप कर रहे हैं, पंच अग्नि ताप रहे हैं, गर्मियों में चारों ओर से अग्नि जला के ऊपर सूर्य के तपत के बीच में बैठ रहे हैं और सर्दियों में गले तक ठंडे पानी में खड़े होकर तप कर रहे हैं। ऐसे तप का वर्णन है और आज का श्लोक जो है उसको हम अभी पढ़ते हैं कि ये तप पृथ्वी महाराज की तपस्या के विषय में है और ये पृथ्वी महाराज के प्रसंग का अंतिम अध्याय। इस अध्याय में पृथ्वी महाराज भगवान के लोक वापस गए इसका वर्णन है, लेकिन इस अध्याय के आखिरी 10 श्लोक आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी महाराज की कथा सुनने से क्या लाभ होता है बहुत बड़ा उसका वर्णन किया है सुखदेव महाराज ने। कथा सुनने वाले को धन, उसको संतान, उसको सौभाग्य, उसका प्रतिष्ठा, उसका राज, फिर उसको भक्ति भगवान की भी प्राप्त होती है। ये पृथ्वी महाराज के प्रसंग सुनने, सुनाने अथवा पढ़ने का क्या लाभ है उसके आखिरी श्लोकों में फल है। तो ये काम कोई हमें क्यों हम कथा सुने, अरे भाई इस कथा क्यों सुने, ये प्रसंग जब उठता है तो उसका उत्तर सुखदेव महाराज अंत में देते हैं कि भाई इसमें क्या आपको प्राप्ति होगी इस कथा सुनने से। भाई तीन बार इस कथा को सुनने से ये होता है, बहुत बड़ा सुंदर आखिरी श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन है इस चीज का। तो आइए आज का श्लोक हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप हमारे पीछे पढ़िए। तिथे क्षोरयत वा कदांत ऊर्ध्वरेताचित अनिल आरिराज्यैषो कृष्ण अचतप उत्तम। तिथेक्षो यद वाकदांत ऊर्ध्वरेताचित अनिल आरिराज्यैषो कृष्ण अचरत तप उत्तम। तिथेक्षो यद वाकदांत ऊर्ध्वरेताचित अनिल आरिराज्यैषो कृष्ण अचरत तप उत्तम। दो तीन पढ़ लीजिए साधु, इसकी आवृत्ति कीजिए। तृतीयक्षोरयवाकदान्त आरिराधयेषु कृष्णम् अचरत्तप उत्तमम्। तिथेक्षो यदवाकदान्त ऊर्ध्वरेताचित अनिल आरिराधयेषु कृष्णम् तप उत्तम। माताजीतेषु कृष्ण अचरत तप उत्तम। तो शब्दों के अर्थ को समझेंगे। हरे कृष्ण जय जय श्री राधिका तितिक्षो। तितिक्षा का अर्थ होता है बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। तितिक्षो मतलब कोई चीज जो सहन नहीं होती उसको सहन कर लेना, तितिक्षो का अर्थ ये। तितिक्षा सहन करना। भगवद गीता में एक श्लोक में ये शब्द आता है, वो श्लोक किसी को याद है? ये भागवत है, महाद्रत प्रशांत कौन तीत क्षण सुख दुख का आगमा पायन होने शुभांत। जैसे गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त कर, जब सर्दी है ना कोट पहन के काम चला लेते हैं ना, गर्मी आएगी तो पंखा चला के काम ले लेंगे, तो ये इसको तितिक्षु बोलते हैं, बर्दाश्त करना। गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना तो तितिक्षु है। तो किस चीज को बर्दाश्त किया, किस चीज को पृथ्वी महाराज ने सहन किया, पहली वह यत, यत जो है शब्द, यत शब्द का यहां अर्थ है यति शब्द, सुना यति शब्द, यतनशील, यति का मतलब यतनशील, यानी अब तितिक्षु करने में यतन करना पड़ेगा हर चीज को। जैसे सर्दी है तो सर्दी से बचने का यतन करना पड़ेगा, तो यत शब्द का मतलब यतन करना, ये संस्कृत का शब्द यत मतलब यतन करना, और यहाँ यत कंट्रोलिंग। तो हिंदी में क्या लिखा, हिंदी को साथ रखिए, आप देखिए इसका, इसको हिंदी पे हिंदी साथ रखिए पढ़ने के, यत का अर्थ देखिए है वश में करते हो, यत यत हाँ देखिए पढ़ पढ़िए क्या वश में करते हुए, तो वश में कर यत, जैसे यत शब्द का मतलब यतन करना, यतन करना ना उस चीज को संभाल संभालना ठीक तरह से कि अपने वश में रहे, बाहर निकल न जाए। तो यत शब्द को इन शब्दों को जब अपनी भाषा में समझेंगे तब इसमें रस आएगा। वाक, वाक कहते हैं बोलने को, किस चीज को यतनशील अपने बस में किया, बोलने को। आपने देखा है सबसे बड़ी समस्या, हम सारा दिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं। हम ट्रेन में जाके हुए हमने देखा है लोग आपस में घंटों बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं लगता, बड़ी परेशानी होती है। आप कभी देखिएगा कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं होता है उसका। तो ये रूप गोस्वामी के श्लोक में पहली चीज है, किस चीज को बस में करना है, वाचो वेगम, जबान को, जबान को जो बुद्धिमानी से अपने वश में रखता है वो संसार में सुखी रह सकता है। और आप इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए, कहीं चलती है कहती की तरह तो बहुत बड़ी गड़बड़ करती है। इसको बस में करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, सब झगड़े इसकी वजह से होते। वाक अपने, इसलिए भगवद गीता में वाणी का तप बताया गया है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। वाणी के तप में क्या बताया गया, मीठा बोलना, तो मीठा बोलना चाहिए, और जो सत्य है वो बोलना चाहिए, और जो दूसरे को तकलीफ दे वो नहीं बोलना चाहिए, और फिर आखिर में है स्वाध्याय, इससे शास्त्र को पढ़ना चाहिए। मीठी वाणी कहां से होगी, शास्त्र पढ़ने से, तो मर्यादा में बोलेगी, नहीं तो मर्यादा में नहीं बोलेगी, शास्त्र से मर्यादा सीखेगी तब मीठा बोलेगी। तो पृथ्वी महाराज ने अर्चन किया, भगवान का दर्शन किया, साधु का संग किया, तो अपने वाग को वश में किया, अपनी वाणी को वश में किया। पहले तोलो फिर बोलो, 32 दांत आगे उसकी रक्षा के लिए रखे हुए हैं, कि एक बार नहीं, दो चार पांच 25 बार सोच लो फिर बोलो, कि बोलना चाहिए कि नहीं, बल्कि फिर किसी का लाभ है इस बोलने में कि नहीं, नहीं है तो कहेगी नहीं बोलना, किसी को हानि तो नहीं होगी, अगर हानि होगी तो नहीं बोलना चाहिए, लाभ नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, किसी को सुख नहीं पहुंचता है तो नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने का बहुत बड़ा महत्व है, कि बोलने को अपने वश में रखना, तो बहुत बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है। जितना हम रोज बोलते हैं ये सारे शब्द आकाश में खड़े, खत्म तो नहीं होते हैं शब्द, और फिर ये शायद ही देते हैं तो आपने बेकार में कितना बोला है, कितनी एनर्जी रोज हमारी वेस्ट होती है, इसमें कभी ध्यान दीजिए। तो पहले पहले वाक को वश में किया, और उसके बाद क्या किया, दांत, दांत इंद्रियों को बोलते हैं, अपने इंद्रियों को, वो नौ जो अष्ट अष्ट योग है जो उसके, उसमें क्या है, पहले जो यम नेम, वो नेम उनमें ये आता है दांत, दांत मतलब अपने इंद्रियों को वश में करना। कौन सी इंद्रियां, पहले कर्म इंद्रियां, गर्म ज्ञान इंद्रियां और मन, ये सब इंद्रियों में आते हैं। तो मन भी इंद्रियों में आता है, लेकिन मन कैसे वश में करता है उसके लिए आगे आएगा। तो इंद्रियां वश में कर ली, तो इंद्रियां वश में करने का क्या चीज मेन वश में करनी है इंद्रियों में, उसका वर्णन दूसरी लाइन में, ऊर्ध्व रेता, इंद्रियां वश में हुई, इसमें कैसे पता लगेगा इंद्रियां वश में हुई, ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता शब्द प्रयोग में आता है वैसे उन महात्माओं के लिए जो संसार में भोग विलास में नहीं फंसते हैं। जैसे रेता शब्द ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और रेता मतलब असल में जो है वो रेता शब्द का अर्थ है जीवन की शक्ति, जिससे अपने से दूसरा एक उत्पत्ति की जाती है, जिसकी वीर्य जिससे उत्पत्ति होती है, दूसरे अपने से एक से अनेक पैदा करने का जो शक्ति है उसको रेता बोलते हैं। ऊर्ध्व मतलब वीर्य को खलत होने से बच के उसको ऊपर की तरफ लेना, वो शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ाना। जितने भागवत सुन रहे थे 88,000 ऋषि नैम श्रेणी में, वो सब ऊर्ध्व रेता थे। उसको कहते ऊर्ध्व रेता। सनक आदि की जो नेतृत्व में जितने ऋषि भागवत सुनने के लिए बैठते वो ऊर्ध्व रेता थे। और सुखदेव गोस्वामी वो ऊर्ध्व रेताओं में शिरोमणि है। तो इंद्रियों वश में है इसका मतलब ये है जो अपने वीर्य की रक्षा करता है, उसको खलित होने से बचाता है। उसको ऊर्ध्व रेता का मतलब जो शक्ति बाहर जाने से बेकार में व्यर्थ जाती है, उस शक्ति को अंदर में आगे तेज, उस शक्ति के तेज बढ़ने से भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग मिलता है। ऊर्ध्व रेता। ऊर्ध्व रेता के बाद एक शब्द है जित अनिलहा। जित का मतलब जीत लेना, और अनिलहा वैसे अनिल शब्द का यहां अर्थ है प्राण, वायु प्राण। तो अपने प्राणों की गति को अपने वश में कर लिया प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का मतलब है अपने प्राणों की गति को अपने वश में कर लिया। तो क्या क्या चीजें पृथ्वी महाराज ने अपने वश में की, बर्दाश्त किया, किस चीज को अपने वश में करने का प्रयास किया? अपनी वाणी को, जीभ को वश में किया, इंद्रियों को वश में किया, और जन इंद्री को विशेष रूप से वीर्य खलित होने से बचा के ऊर्ध्वरेता बना, और फिर अपने प्राणों को वश में किया। क्यों किया? काय के लिए किया? ये दूसरा प्रश्न, क्यों किया? ये सब चीजें क्या आवश्यकता थी इन सब चीजों को वश में करने की? इन सब चीजों की भोग को बर्दाश्त किया, मतलब भोग नहीं किया तो इसका मतलब भोग की जो इच्छाएं थे उनको बर्दाश्त किया, उनको टॉलरेट किया, उनको सहन किया। क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए ना। तो क्यों का अर्थ है तीसरी लाइन में आर्य राजेशो कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्यों किया? बच्चा आपका स्कूल में पढ़ने जाता है, आंखों से दूर रहता है, किसी हॉस्टल में जाके रहता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, इतनी सारी तकलीफ उठाता है, क्यों? ताकि उसका जीवन शिक्षित हो जाएगा, माता पिता को सुख देगा, संसार को सुख देगा, किसी की प्रीति के लिए कर रहा है। इतना सारा आप कष्ट उठा रहे हो, परिवार का पालन कर रहे हो, क्यों? किसी को खुश करने के लिए। तो पृथ्वी महाराज किसको प्रसन्न करने के लिए इतना सारा परिश्रम कर रहे थे? ये देखो बहुत सुंदर, आर आर ये देशो भगवत की, भगवत कृष्ण प्रसन्न, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। आर आर ये देशो का अर्थ क्या लिखा है? सिंपली डिजायरिंग। आर आर येशु किसकी? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा के लिए क्या किया? अचरत मतलब आचरण किया, अचरत आचरण प्रैक्टिस की, आचरण करना मतलब जीवन में अभ्यास करना। तप तपस, तप का अर्थ प्रभुपाद देखते हैं जो चीजें हैं आपके सामने हैं और उनके इच्छा भी होती है कि इसको मैं प्राप्त करूं, लेकिन उनको त्याग करने का मन में भाव आ जाए तो उसको तप बोलते हैं। और इस तप के परिभाषा में कल हम एक रास्ते में आते हुए उनकी गाड़ी में ये श्री कृष्ण कृष्णदास प्रभु कृष्ण जय कृष्ण प्रभु गाड़ी में उनको ले आ रहे थे स्टेशन से। प्रभुपाद कहते छोटा सा तप कर लो, छोटे तप में कौन सी आपत्ति है? अरे अरे भाई अपना खान पान ठीक रखो, भगवान का केवल प्रसाद खाओ, जो कुछ है वो नहीं खाओ, तो ये तप है। बाजार से जाते हो आजकल वो बांके बिहारी की गली में जब हम आंस घोसते हैं ना तो उसी वक्त वो आलू के बल्ले को घी दे के तो बांके बिहारी भूल जाता है उधर खड़े होकर खाने का मन करता है। अब देखा है वो जब उसी वक्त उसको वो घी लगाएगा जब आप वहां से गुजरेंगे नहीं तो नहीं लगाएगा। तो भगवान की तरफ जाने वाला आपका जो भाव है उसको एकदम अपनी तरफ ले जाइए चलते बाद में ये बड़ा वो जो नासिका से पकड़ लेते हैं देखा अपने कभी जाते हुए ना तो ये जो है उसको उस वक्त बर्दाश्त करना नहीं भगवान का दर्शन पहले ये तो सारी उम्र खाते रहते दर्शन रोज शुरू होता है तो उसको ये तपस्या है। फिर का नशे से बचना तपस्या है विवाहित जीवन से बाहर कोई भी संबंध नहीं रखना तपस्या है। जो चार चार जो नए नए तपस्या प्रभुपाद की आखिरी तपस्या ये कर लेने से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होती तो ये तपस्या है क्यों तप उत्तम ये उत्तम तप है। तो अब इसका पढ़ते हैं अर्थ श्लोक। अभी श्लोक के शब्द आपको अभी इधर देखिए इन शब्दों को आपको समझ में आता है प्रत्यक्षण वाक फिर है यत वाक फिर है दांत दांत का मतलब इंद्रियां वाक का मतलब वाणी यत का मतलब अपने वश में करना यतन से प्रत्यक्ष मतलब बर्दाश्त किया सहन किया और फिर ऊर्ध्वरेता और फिर है जित अनिल और फिर है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता के लिए और फिर है तप है ये बहुत बड़ा उत्तम तप है। और कैसा उत्तम तप है जब ये आचरण करेंगे तब हम सब इसका अभ्यास करेंगे तब तो ये श्लोक श्लोक के शब्द ठीक लग रहे आपकी अपनी भाषा में इसमें 80% आपकी भाषा में इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आएगा तो ये श्लोक फिर कभी आपके जहन से निकलेगा नहीं। प्रयास कीजिए कितने शब्द आपकी भाषा में है तो बाकी तो याद करने के लिए 2-3 बज जाएंगे पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं महाराज पृथु इन सब घोर तपस्याओं को किया क्योंकि घोर तपस्याओं को किया महाराज पृथु ने क्या क्या किया अपने वाणी को अपने शब्दों को वश में किया अपने इंद्रियों को वश में किया अपने वीर्य को खलित होने से बचाया और अपने प्राणों को अपने वश में कर रखा। ये सब क्यों किया भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए और कोई उनका पर्पज नहीं था यही उनका उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से पृथु महाराज ने अपने वाणी इंद्रियां जनेन्द्री और प्राणों को वश में किया और घोर तपस्या की। अब भावार्थ में श्री प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं कलयुग में वृद्ध नारदीय पुराण में लिखा है हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्मृतम और इसका इसके अर्थ लिखने के बजाय प्रभुपाद शुरुआत क्या करते भगवान श्री कृष्ण आपको पहचान ले अथवा आप भगवान की नजर में आ जाएं बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक शब्द है इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज बाय कृष्ण इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज बाय कृष्ण जैसे हम रोज आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए भगवान कब अटेंडेंस लगाएंगे कि आज ये आया वो महत्वपूर्ण है। विठल भगवान पंडरपुर में बहुत से लोग उसका दर्शन करने जाते हैं तो वो किसी की तरफ देखता नहीं है तो रुक्मणी पूछती इतने सारे लोग आ रहे हैं आपका दर्शन करने आप देख क्यों नहीं बोला ये मेरा दर्शन नहीं करने आए ये अपनी इच्छाएं लेके आए हैं ये कुछ मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं इनको देख के क्या करूंगा कोई मुझे देखने आए तो मैं उसको देखूं ना तो भगवान को देखने कौन आता है अपनी समस्याएं लेकर आते हैं अपना घर के ऊपर भोरी बोरी लाके उधर भेजते हैं और इतनी बड़ी लिस्ट अपने इच्छाओं की भगवान के चरणों में रखते हैं तो भगवान क्यों देखेगा आपको। तो ये शब्द लिखने का अर्थ है इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज बाय कृष्ण। तो भक्त कब भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज करके अर्थ लिखा है पहचानने को, उसका शास्त्रीय भाषा का अर्थ बहुत सुंदर होना चाहिए। भगवान की दृष्टि किसी के ऊपर पड़े अथवा भगवान किसी को अपने लिस्ट में गिन ले, भगवान की गिनती में आने के लिए कि मेरे कितने भक्त हैं ये भगवान से कोई पूछे, उस गिनती में आने के लिए कहते उस गिनती में आने के लिए हर एक को भगवान के नाम का 24 घंटा जप करना चाहिए। देखा 24 घंटा हिंदी आप रखिए साथ में पढ़ने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। मैं अंग्रेजी से अनुवाद पढ़ता हूँ, कोई पढ़ ले साथ में, पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए।
भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए जो भी घंटे उनके नाम जपने की आवश्यकता है,
ये पहली लाइन अभी हमने आपको बताया है। भगवान श्री कृष्ण से मान्य होने के लिए अथवा उनकी दृष्टि में आने के लिए, उनकी गिनती में आने के लिए हर समय 24 घंटे हमारे को भगवान के नाम का स्मृति रहनी चाहिए, जप करना चाहिए।
दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुण को नहीं स्वीकारते वे अन्य प्रकार का छद्य चिंतन पसंद करते हैं।
स्यूडो मेडिटेशन लिखा है छद्य, कि जो इस बहुत सरल रास्ते को हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस सरल सुगम मार्ग को बहुत आसान समझ के बहुत मुश्किल प्रयास करने का, मुश्किल रास्ते से भगवान को प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं, वो छिद्र वो कर तो पाएंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो आसान है इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये कहने का भाव है, जब शास्त्र, जब ब्रह्मा जिसने ये सृष्टि की है उसने कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोज दशकम नाम नाम कली कलमच नाशनम, ये सारे वेदों का मैंने सार आपको बता रहा हूँ। वेद मैंने दिए हैं, भगवान से मैंने प्राप्त किए वेद मैंने नारद को दिए हैं, तो इस वेदों में भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र के अलावा और कुछ है नहीं। जब ब्रह्मा कह रहा है, जो पिता है हमारा, तो पिता का कहना नहीं मान के हम अपनी मर्जी से, कितने लोग हैं जो पिता का कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी से अपने मर्जी से जाके कोई कारोबार करते हैं, कितने लोग हैं? 90% लोग नहीं बढ़ूंगा मानते सत्य के झूठ है, वहां नहीं मानते। तो यहां भगवान की भी बात नहीं मानते, तो ब्रह्मा की बात नहीं मानते। राजा ने इस बात को मान लिया, परीक्षित महाराज ने ये बात मान ली, जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं है, कलयुग के दुखों से निवृत्त होने का, अस्ति एको महागुण, एक ही महागुण है कलयुग में। जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कीर्तन कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, तो महाराज परीक्षित ने उस चीज को स्वीकार किया और सबके सामने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की। परीक्षित महाराज ने, जब महात्मा सुखदेव की वाणी परीक्षित महाराज ने उसको अपनाया, जब ब्रह्मा की शिक्षा, उसके जो संतान हम है जिसको पैदा किया है ब्रह्मा ने, उसके आदेश का पालन अगर करना चाहते हैं तो ये आसान है। भगवान की नजर में आना बहुत आसान है, उसकी गिनती में आना आसान है। लेकिन अगर हम इन सबको मानने के लिए तैयार नहीं, अपने ही प्रयास करके कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं तो बहुत कठिन सा है रास्ता, वो कठिनाई को हमको झेलना पड़ेगा। फिर तो इसके बाद आएगा,
किंतु वास्तविकता यह है कि निश्चित होने के लिए या तो ऊपर वाली तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए।
तो यहाँ फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी मर्जी, आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। अब या तो आप जैसे पृथ्वी महाराज ने तपस्या की ऐसे कीजिए, और अगर ऐसे करने में आप समझते हैं कि समर्थ नहीं है तो फिर दूसरा आपको आसान रास्ता बताते हैं, बहुत सरल, आइए भगवान की भक्ति कीजिए। अब आप ये च्वाइस कर लीजिए कि आप पृथ्वी महाराज वाला काम कर सकते हैं कि जमुना जी के अंदर अभी दिसंबर में जाके खड़े होंगे, गले वाले पानी में नहीं हो सकते, तो फिर ये सादा सा रास्ता अपना करें। तो कभी कभी ये चीजें इसलिए बताई जाती है ताकि लोगों को मालूम हो कि ये हम नहीं कर सकते। किसी ने मुझे कहा छठे अध्याय भगवद गीता में छठा अध्याय है, भगवान ने अष्टांग योग और ध्यान सिखाया है तो हमको करना चाहिए। میں نے بولا آپ بھگوان پھر ارجن نے نہیں کیا. میں نے بولا ہاں بولا ارجن تو بولا میں نہیں کر سکتا ہوں. تو اس نے بولا بھگوان کو کہنے کا ارتھ کیا تھا؟ میں نے بھگوان نے اس لیے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا آپ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی یہ شکشا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہمارے سے نہیں ہوگی, تو نہیں تو پھر آپ سوچے نہیں ہو سکتا ہے میں کروں گا, نہ ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں. ٹائم خراب کرو گے اس کے لیے. آپ کو اچھی طرح سے اس کا روپ دکھا دیا جائے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اب آپ سیدھا سا راستہ ہے اس کو اپنا لو, ٹائم مت اس میں ویسٹ کرو. تو کبھی کبھی یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ اس کا کھنڈن کرنا آسان ہو, ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور مدھوسودن سرسوتی نے بہت بڑا ادویت واد کا ادھیئن کیا, کئی سالوں تک سارے شاستروں کو پڑھا. کیوں؟ کہ ادویت کا کھنڈن کر کے بھگوان شری کرشن کی بھکتی کرنی تھی. تو اسے کیوں پڑھا؟ کسی نے بولا اس لیے پڑھا تاکہ سب کو بتاؤں کہ میں پڑھ چکا ہوں, اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑ, اب تم دوبارہ ابھیاس کر کے دیں. کسی ہم کہتے ہیں بھائی شاستر کہتا ہے جس نے جنم لیا ہے وہ مرے گا. کوئی نہیں میں نہیں مانتا ہوں ایسے ہوگا. ٹھیک ہے کہ جنم لیا تم ادھر بیٹھے رہو, جب تک یہ مرتا ہے تب تک دیکھتے رہو, کون منع کرے گا تمہیں؟ اس سے پہلے تم مر جاؤ گے, پھر کوئی اور دیکھے گا آ کے. اب ہم کہتے ہیں کہ چوتھے مالے سے کودنے سے ہڈی ٹوٹ جائے گی, پر نہیں ہم ماں نہیں مانتے, جاؤ کودو. بس سمپل سی بات ہے, نہیں مانتے جاؤ کودو. تو یہ بات ایسی ہے کہ اس لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ آپ جلدی سے اس جھنجھٹ سے بچ جاؤ اور سیدھے راستے کو اپنا لیں. تو بھگوان اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو سرل راستہ اپنانے میں کوئی کٹنائی نہ ہو, تو من میں سنشا نہ رہ جائے کہ ارے ارے نہیں میں وہ کرتا تو اچھا ہوتا. نہیں نہیں نہیں, وہ کرم کے اچھا نہیں ہوگا. بہت لوگوں نے پریاس کر لیا ہے, پرسو مہاراج کی طرح کر سکتے ہو تو کرو, گھر چھوڑو جاؤ پتنی کو لے کر سیدھا گنگا میں جا کے, ہردوار میں جا کے گنگا کے اندر بیٹھ جاؤ دسمبر میں اور جنوری کے اندر, اور پھر جون جولائی کے اندر جو ہے وہ کہاں کے دلی میں, ٹھیک ہے دلی میں ہی کام ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, جو نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے سرل راستہ ہے تو اس کو اپنانا چاہیے. اس میں دوسرا بھاگ بہت مہتوپورن ہے بھاوارتھ کا, جلدی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا آگے چلیں گے.
جو ویکتی کرشن بھکت ہوتا ہے وہ اتیانت بدھیمان ہے, کیونکہ کلیوگ میں ایسے کٹھن تپسیاں کر پانا سمبھو نہیں ہے. ہمیں بھگوان شری چیتنیہ مہاپربھو جیسے مہاپرشوں کے انوسرن کی ہی آوشیکتا ہے. شاستر میں بھگوان چیتنیہ مہاپربھو نے لکھا ہے پرم جے شری کرشن سنکیرتنم, شری کرشن کے نام کی جے ہو جو پرارمبھ سے ہردے کو وشد کر کے ترنت مکتی پردان کرتا ہے. بھو مہا داوا میں نرواہ بنم, یعنی سمت یوگوں کا اصلی ادیش شری کرشن کو پسند کرنا ہے تو اس یوگ کے لیے سنسکرت بھکتی یوگ پریاپت ہے, کنتو یہ آوشیک ہے کہ بھگوان کی سیوا میں نرنتر سلگن رہا جائے. یدپی پتو مہاراج نے اپنا تپ شری کرشن کے آویرباؤ کے بہت پہلے کیا تھا, کنتو اس کا ادیش شری کرشن کو ہی پسند کرنا تھا.
ٹھیک, تو یہاں ہم نے دو پہلے ادھارن دیے کہ برہما نے کہا ہے کہ ہری کرشن منتر جپو, پھر سکھدیو مہاراج نے کہا ہے, اور تیسرا بھگوان شری کرشن سوئم چیتنا مہاپربھو کے روپ میں آئے تب بھی انہوں نے کہا پرم وجیتے شری کرشن سنکیرتن. پہلے اپنے بیٹے برہما کو کہا تم جا کے بتاؤ, پھر سکھدیو گوسوامی اپنے بہت بڑے پرم جو ہے بھکت کو کہا کہ جا کے اس راجا کو سندیش دو, اور پھر سوئم بھگوان شری کرشن چیتنا مہاپربھو کے روپ میں آ کے کہا پرم وجیتے شری کرشن سنکیرتن. یہ تب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ہردے کو پویتر کیا جائے. تو پویتر کون کرے گا؟ آپ کو ایک پرشن ہے, اس کو یاد رکھنا, پویتر کون کرے گا؟ ہم کو پویتر کون کر سکتا ہے؟ ایک منتر آپ نے دیکھا ہے یگیہ سے پہلے سب پڑھتے ہیں, کیا ہے؟ اوم اپویتر وا پویتر سروا سانگتو بیوائی سمرے تپن ریکات شبایا بند. اندر باہر سے پویتر کب ہوتی ہے؟ بھگوان وشنو کے نام لینے سے. اور کوئی پویترتا کا راستہ نہیں, آپ کو اور کوئی پویتر نہیں کر سکتا ہے, کیول بھگوان ہی پویتر کر سکتے. یہ ہے سدھانت, یاد کر لیجیے. آپ اپنے پریاس سے پویتر نہیں ہو سکتے, کیول بھگوت بھگوان کا نام ہی پویتر کرنے والا ہے. من پویتر ہری نام لی, بھگوان کا نام لینے سے من انتکرن کی پویترتا ہوتی ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. جیسے جھاڑو نکالنے سے گھر کا کچرا نکلتا ہے, ایسے بھگوان کے نام لینے سے ہردے کا مارجن ہوتا ہے. چیتو درپن مارجن, مارجن کا مطلب جھاڑو نکالنا. ہردے روپی درپن کا مارجن کب ہوگا؟ وہ شیشہ کیسے صاف ہوگا؟ परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद प्रभुपाद जी एक बात को उल्लेख करते हैं कि पृथ्वी महाराज जी तो सतयुग की बात है। सतयुग में ये श्लोक लिखता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए पृथ्वी महाराज ने तप किया। तो फिर आजकल के मूर्ख लोग कहते हैं 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आया तो फिर उसका तप, उसका अभिकाय के लिए पूजा करें। एक प्रश्न आपसे लोग ज्यादातर पूछते हैं भक्तों से, आप हरे कृष्ण मंत्र में कृष्ण पहले बोलते हो राम पीछे क्यों बोलते हैं, राम पहले आए कृष्ण पीछे आए? ये बड़ा प्रश्न लोग पूछते हैं आपसे। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी इस बात को उल्लेख करके बताना चाहते हैं कि पृथ्वी महाराज उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे जब भगवान 5000 साल की बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण एक कलयुग में, एक कल्प में विशेष रूप से आते हैं। ये चक्कर चलता रहता है समय समय पे इस विशेष कल्प में। जिस कल्प में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उसमें चेतना महाप्रभु भी आते हैं बाद में। तो ये तो घटना अभी 50 साल ब्रह्मा जी के पूरे हुए हैं, 50 साल पूरे हुए, 100 साल तक जिएगा। एक दिन ब्रह्मा का एक कल्प कहलाता है, एक दिन। और ब्रह्मा के एक दिन की गणना करनी है, एक दिन में आपने कितने घंटे होते हैं? अच्छा, 24 घंटों में दिन कितने घंटे का होता है? ब्रह्मा जी का दिन 14 घंटे का समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? ब्रह्मा जी के एक घंटे में 72 मिनट गिन लीजिए। और एक मिनट में सेकंड 60 होते हैं, इसको भूल जाइए। ब्रह्मा के एक मिनट में एक चतुर्युगी पूरी होती है। एक चतुर्युगी यानी 4 युग पूरे होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 432 का कलयुग, उसका डबल द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका चौगुना, ये सब गिनो, ये हो गया ब्रह्मा जी का एक मिनट। तो सेकंड का हिसाब कहां से करेंगे? 72 चतुर्युगियां जाती हैं और 14 मनवंत्र होते हैं तब एक कल्प होता है। तो 14 घंटे एक दिन में, 14 घंटे रात में, 72 जो है वो चतुर्युगियां, एक 72 मिनट, एक मिनट हो गया ब्रह्मा का। तो 14 72 के हिसाब से, ये ब्रह्मा के हिसाब से 50 साल बीत गए। तो कितनी बार भगवान श्री कृष्ण आए? ये एक ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, ऐसे कई ब्रह्मा बीत गए। लेकिन इस ब्रह्मा के 50 साल में कई बार भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो पृथ्वी जैसे महात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रहता है, साधारण व्यक्ति को नहीं रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद, भगवान श्री कृष्ण तब से है जब कोई नहीं था, ये ब्रह्मा जी कह रहा है। तो अगर किसी ने भगवान को देखा हुआ तो पहला उसने देखा हुआ जो पहला पैदा हुआ, पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए, उसने कहा कि कृष्ण ईश्वर, परम कृष्ण, परम कृष्ण भगवान ही ईश्वर है, परमेश्वर कृष्ण है, बाकी सब ईश्वर है। वो गोविंद के नाम से जाना जाता है, अनादि काल से जाना जाता है। तो ये बात, ये सिद्धांत को प्रभुपाद जी ये पूरे पैराग्राफ में इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनादि काल से पूजित है। और वैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं ये गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया, और सूर्य के वंश के अंदर फिर रघुकुल में भगवान राम का अवतार उसके बाद हुआ। तो कई साल पहले भगवत गीता, और जो ये सूर्य देवता को भगवत गीता दी, इससे पहले कई बार और भी ऐसी परंपराएं भगवान ने चलाई, भगवत गीता को दिया है, ऐसे लिखा है महाभारत में, 3-4 परंपराओं का और वर्णन है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, ये इस प्राव का भाव है, अब इसको प्रश्न लेते हैं।
ऐसे अनेक अज्ञानी हैं जो ये दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई जब भगवान कृष्ण भारत में प्रकट हुए, किंतु यह असलियत नहीं है। पृथ्वी महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा 800 वर्ष पूर्व की, क्योंकि पृथ्वी महाराज ध्रुव के वंशज थे जिन्होंने सत्ययुग में 36 राजाओं तक राज्य किया था। जब तक ध्रुव महाराज 1,00,000 वर्ष की आयु तक जीवित न रहे हों, वे 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे? बात तो यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ में विद्यमान थी और सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर युग होते हुए कलयुग में चल रही है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। अलंकार कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं है कि जब 5,00,000 वर्ष पूर्व स्थिति में श्री कृष्ण प्रकट हुए तभी से पूजा चालू हुई, یا پرتاپون نشکرش ہے جس کی پشتی ویدک ساہتیہ میں نہیں ہوتی.
تو ٹھیک ہے, یہ بات سپشٹ ہوگی کہ بھگوان شری کرشن پوجا انادی کال سے ہوتی ہے. پرتھو جیسے مہاراج کیا کرتے تھے, درو مہاراج کیا کرتے تھے, تو یہ 5000 سال سے بھگوان شری کرشن آئے, اس سے پہلے کئی بار بھگوان آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سپشٹ ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. اب پروپاد جی تیسری لائن شلوک کے اس کے اوپر ورنن کرنا چاہتے ہیں. تیسری لائن کیا ہے؟ آئے رادھیشو کرشن, اسی کے اوپر ورنن کریں گے. پڑھیے سنتے ہیں.
اس شلوک کے جتنے پنکتے آرے رادھیشو کرشن اچر تمم اتمم بھی مہتوپورن ہے. کرشن پوجن کے لیے مہاراج پرتھو نے انیک پرکار کی کٹھن تپسیاں کی, کنتو اس یوگ میں شری کرشن وشیش روپ سے دیالو ہیں. انہیں اپنے دیوے نام سے اچارن سے ہی پرکٹ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ نارد پنچراتر میں کہا گیا ہے, ارادتو یدی ہری تپتا ستا کے, یدی کرشن کی پوجا کی جائے یدی انتی کے لکش وہی ہیں تو انیک پرکار کی کٹھور تپسیاں کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے, کیونکہ لکش تو پہلے ہی پراپت ہو چکا ہے. یدی سبھی پرکار کی تپسیاں کر کے کوئی کرشن کو نہیں پراپت کر پاتا تو اس کی ساری تپسیا ویرتھ رہتی ہے, کیونکہ بنا کرشن کے ساری تپسیا یتھا شرم ہے. شرم ایو ہی کیولم. اتہ ہمیں یہ سوچ کر نراش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنگل جا کر کٹھن تپسیا نہیں کر پا رہے. ہمارا جیون اتنا الپ ہے کہ ہمیں ویشنو آچاریوں دوارا بتائے گئے نیموں کا درڑتا سے پالن کرنا چاہیے اور شانتی پوروک کرشن بھکتی کرنی چاہیے. ہتاش ہونے کی کوئی آوشیکتا نہیں ہے. ٹھاکر کا تو کہنا ہے, آنند بلی ہری بھج ورنداون شری گرو ویشنو پتے مدائی مانو. دیو آنند جیون کے لیے ہرے کرشن منتر کا جپ کرو, پوتر استھان ورنداون جا کر پوجا کرو اور سدے بھگوان گرو تتھا ویشنو کی سیوا کرو. اتہ یہ کرشن بھانمت آندولن اتیت سرل ایون نراپد ہے. ہمیں کیول بھگوان کے آدیشوں کا پالن ایون ان کی شرن گرہن کرنا ہوتا ہے. اس میں ہمیں گرو کے آدیش کا پالن کرنا ہوتا ہے, کرشن بھکتی کا اپدیش دینا ہوتا ہے اور ویشنو کے پت کا انوسرن کرنا ہوتا ہے. گرو کے آدیشوں کا پالن کرنا تو ہرے کرشن کا جپ کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
ہرے کرشن. تو کہاں پہنچے؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ ورکنگ ڈے ہے. نو پانچ ہو گیا. شلوک کے انتم بھاوات میں پربھوپاد جی وشیش ایک بات کہتے ہیں کہ تپسیا گھور کی جائے کس کے لیے, جب وہ کرنی ہی بھگوان کی پراپتی کے لیے ہے, اور جب شاستر کہتے ہیں کہ بھگوان کی پراپتی بھگوان کے نام لینے سے ہی ہو سکتی ہے, تو پھر زیادہ مشکل راستے کو اپنانے کی آوشیکتا کیا؟ بھگوت گیتا کا 12th ادھیائے اسی سے شروع ہوتا ہے. ارجن یہ پرشن پوچھتا ہے کہ بھگوان آپ کو جیسے آپ میرے سامنے کھڑے ہیں ایسے میں آپ کا دھیان کروں یا پوجا کروں وہ ٹھیک ہے, یا آپ کا نراکار جو اویکت روپ ہے اس کا دھیان کروں, ان دونوں میں یوگ وتما کون سا ہے؟ یوگ وتما کا مطلب ہوتا ہے یوگ وت, یوگ وتر, یوگ وتما کا سپرلیٹو گڈ بیٹر بیسٹ جیسے ہوتا ہے نا, تو یوگ وتما کا ارتھ ہوتا ہے سروشریشٹھ کیا ہے. تب بھگوان شری کرشن اتر دیتے ہیں, میں آویش منو یہ مام نت یوکتا اپاستے, جو اپنا من مجھ میں آوشت کر کے, من آوشت کرنے کا مطلب ہے کہ من میں اور کسی کے لیے جگہ نہیں ہو. میں آویش منو یہ مام نت یوکتا اپاستے, نت مطلب روز, یوکتا مطلب, یوکتا مطلب ہے کسی کے پاس بیٹھنا, اس کو یوکت کہتے ہیں. یوگل کا مطلب جو جوڑی ہو, تو یوکت یوگل یہ بھاس جو ساتھ میں بیٹھتا ہے. اس لیے ایک بات کہاوت ہماری بھاشا میں ہے کہ جو چولہے پہ جس کے لیے روز بنتا ہے بھوجن وہ ہمیشہ دل پہ رہتا ہے. جس کا بھوجن وہ تو دل میں رہے گا, جو چولہے پہ وہ دل پہ, یعنی جس کا بھوجن روز گھر میں بنے گا تو اس کو روز یاد کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی مہمان آئے گا تو بولے گا دو آدمی کا زیادہ, ورنہ پانچ جو ہے وہ تو دل پہ ہی ہوتے ہیں, پانچ کی روٹی پڑنی ہے روز. تو جو جڑا ہوگا ساتھ رہے گا وہ تو دل سے ایک منٹ بھی نہیں اترے گا. تو جب بھوجن بنائیں گے تو بھی اس کی یاد آئے گی, کوئی چیز ہو تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے والا. تو یوکت کا مطلب ہے بھگوان کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے. تو بھگوان ارجن اور کرشن ایک رکھ کے اوپر بیٹھے, یہ یوکت ہے, کرشن ارجن یوکت ہے, تو دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے. तो ऐसे भगवान की जो उपासना करता है, उपासना का अर्थ क्या है, उप आसन, उप का मतलब ऊपर, आसन का मतलब अपना आसन भगवान के निकट रख के बैठना। तो पूजा करना उपासना, पूजा को उपासना कहता है। तो पूजा कैसे करते हैं, भगवान के निकट बैठ के की जाती है, ऐसे नहीं भगवान यहाँ है और आप दूसरे कमरे में उधर बैठ के पूजा, नहीं, भगवान के पास आके पूजा करनी होती है। इसके लिए इसका नाम है उपासना, ऊपर बैठ के पास में आसन लगा के बैठना। तो नित्य युक्त उपासते, भगवान के उपासना करनी है मतलब बहुत निकट में बैठना है और दिल पे भगवान को मन के अंदर बिठा देना, नित्य युक्त उपासते। और कैसे उपासना करनी चाहिए, ऐसे तो मंदिर में बहुत पुजारी हमने रखे हैं, वो रोज घंटी बजा लेते हैं, रोज टाइम से आरती करते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द पीछे लगा दिया, श्रद्धा। श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, तनख्वाह बंद हो जाए तो पूजा थोड़ी करेगा पुजारी। जो मंदिर में आपने पुजारी रखे हैं उसको महीने की तनख्वाह नहीं हो तो पूजा नहीं करेगा ना, तो उसकी श्रद्धा पूजा में नहीं है, उसकी श्रद्धा तो तनख्वाह में। श्रद्धा और फिर परिउपेता, उपेता और परिउपेता, ये परियु शब्द डाला है कि काय के लिए कर रहा है, परम पद को प्राप्त करने के, परियों का मतलब संसार की नहीं, परे की, भगवान की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ कर रहा है। मैं आवेश मनोये माम नित्य युक्ता उपास श्रद्धया परिपेते, मैं युक्त को उनको मैं सर्वश्रेष्ठ मुझसे मिले हुए मानता हूं। ये युक्तत्म यहाँ है और योग वित्म छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, दोनों का अर्थ एक ही है, वहां भी यही भाषा है। योगी नाम अभी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा, अपने अंदर में जो मेरा हर वक्त ध्यान करता है, मैं आवेश मना का वही अर्थ है। उधर भी श्रद्धा शब्द आएगा, तो श्रद्धा है कि नहीं, उधर देखिए छठे अध्याय का आखिरी श्लोक, कोई आवृत्ति कीजिए किसी की याद है, योगी नाम अभी सर्वेशा मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम सोमे सो युक्तत्मा। वहां एक योग है एक युक्त है, लेकिन वहां भी श्रद्धा है यहां भी श्रद्धा है, दोनों श्लोक का अर्थ एक ही है, लेकिन छठे अध्याय में भगवान ने अपनी मर्जी से बोला था और अर्जुन को योग करना नहीं था इसलिए उसने दिमाग में रखा नहीं। अब खुद सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, अब भगवान कह रहा है, तब इसका नाम भक्ति योग हो गया। कई बात आप नहीं पूछते हैं, आपको पिछले बताया जाए याद नहीं रहेगा, लेकिन आप पूछ के जब उसका उत्तर मिलेगा तो आप हमेशा उसको याद रखते हैं। तो वही चीज दोबारा आवर्ती हो रही है इस बार में अध्याय। तो भगवान सरल रास्ता स्वयं बताते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए केवल मन में मुझे बिठा दो, मन मना, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान गीता का है, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम क्या है, मन मना, मन में हमेशा भगवान को बसा लेना। और कैसे बसाना, बहुत सरल तरीका है, हर समय भगवान का स्मरण रखना और उसके लिए कम से कम नित्य नियम से भगवान के नाम का जप करना, जिसके नाम का आप जप करोगे वो नाम हर वक्त याद रहेगा और भगवान की सेवा में संलग्न रहना, ये बहुत सरल तरीका है और ये करने में किसी को कठिनाई नहीं है। पृथ्वी महाराज जैसे तप नहीं कर सकते हैं, वन में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, वन में ही जाना है तो वृंदावन यहाँ नजदीक है, दिल्ली से कभी जाया करो महीने में, भगवान का दर्शन करा के वापस आ जाया करो, लेकिन प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के भावार्थ में ही बता दिया है, ये कृष्ण भावना, ये सोसाइटी जो आपकी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय है, आप सबके लिए है, तो इस सोसाइटी के अंदर आपको ये सरल रास्ता सिखाया जाता है जिससे आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो पृथ्वी महाराज ने प्राप्त किया। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री प्रभुपाद के इस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में सरल विधि से भगवत कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण प्रसन्नता का मार्ग, जो सुलभ आपको हर समय हर जगह, आप अपने दुकान पे मकान पे जहां भी हैं वहां इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको उपलब्ध किया जाता है साहित्य के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, इसका उपयोग करके मानव जन्म को सफल कीजिए, यही संदेश आपके लिए है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु, क्या नाम?
विकास,
विकास बोलिए।
जैसे आपने वाचो वेदों के बारे में बताया, कलयुग में इतनी समस्याएं हैं और हमें कई लोगों से भी बहुत बोलना भी पड़ता है, कई बार बहुत एक्साइटमेंट रहती है, तो उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है, पड़ता ही है, तो उसको हाउ टू कंट्रोल, कैसे?
प्रथम बहुत बड़ी प्रयास की, इसलिए पहले बोला, पहले ही वाणी को कंट्रोल किया तब दूसरा कुछ कंट्रोल हुआ। वाणी को, जीभा को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दो ही चीजों से वश में आती है, कृष्ण प्रसाद खाने से और भगवान का नाम जपने से, और कोई रास्ता नहीं। कृष्ण प्रसाद और भगवत नाम जीभा को वश में करना, और कोई रास्ता नहीं है। वैसे बोलना तो पड़ता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन चुप रहने से शक्ति और ज्यादा है। आप बोले किसी को और चुप रहे, देखे चुप रहने से लोग बड़ा परेशान होकर आपके चारों ओर घूमेंगे, और बोलेंगे तो बड़ा खत्म हो गया। एक बड़ी उम्र का 60 साल का बाबा जी घर में था, और घर में बूढ़ा आदमी तो खाने के ऊपर झगड़ा, ये ठंडा क्यों दिया, इसमें मिर्ची कम, इसमें नमक क्या है, बहुत बड़ा परेशान दुखी हो गया। घर वाले परेशान हो गए, इसको डॉक्टर के पास गए, बोला डॉक्टर ने बोला मेरे पास लेके आओ, वो जो बीमार है उसको। बाबा को ले गया, बाबा को बोला अच्छा एक दवाई देता हूँ, ये गोली खाने के बाद पानी पीना, पानी पीने के बाद 3 घंटे बोलना मत, बोलोगे तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा। बाबा दवाई खाए और पानी पिए, फिर घर में बेटा बोले बाबा ये खाओगे, बाबा चुप, नहीं मांग रहा है तो सब चीजें लाके आगे रख दे। फिर बाबा आपका लिए बिस्तर लगाए, बाबा चुप, तो अपने आप हर एक चीज फर्स्ट क्लास, 3 प्रकार की पड़ी जो चाहे वो, बोले नहीं बिल्कुल। घर में झगड़ा खत्म हो गया, घर वाले परेशान, तो सब चीजें उसको बगैर मांगे मिलने लगी। तो हफ्ते के बाद डॉक्टर ने पूछा बाबा कैसे, बोला बाबा बहुत अच्छा है, तबीयत अभी अच्छी है घर में। बोला बाबा को ले आओ देखो, बाबा को बोला बाबा कैसे हो, बाबा चुप, अरे बाबा मैंने तुमको ये मंत्र दिया है दवाई का, मुझसे तो बात करो। घर में तो शांति हो गई, दवाई खाओ 3 घंटे नहीं बोलना, लेकिन मंदिर में आओ तब कथा करनी हो तब बोलना, तब चुप मत करना, बाकी समय चुप। तो चुप का बहुत बड़ा एक है मौनम, भगवद गीता में एक शब्द है गोयानाम मौनम अस्मि। अगर आप चाहते हैं कोई आपको नहीं जान सके, आप गुप्त ही रहे तो चुप रहिए, बोलिए वो वहां बोलिए जहां आवश्यकता हो। बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में है, किसका, जड़ भरत का, नहीं बोलते थे लेकिन तब बोले जब योग्य रघुगुण महाराज मिला, तभी सिर्फ बोले। सब बोलना चाहिए जब किसी को आपको सुधारना हो, किसी को रखे ही रास्ते पे लगाना हो, लेकिन किसी को बिगाड़ने के लिए बोलने की जरूरत क्या, वैसे ही बिगड़ा हुआ है। सुधारना हो तो बोलना चाहिए बिगाड़, वैसे ज्यादातर हम बिगाड़ने के लिए ही बोलते हैं और बुरा ही बोलते हैं, अच्छा तो बहुत कम। अच्छा बोलना मतलब दूसरे की प्रशंसा करना, वो तो हमको आती नहीं है। कोई अच्छा किसी को बोलते, कभी घर में कहो दे आपने आज बहुत अच्छा भोजन बनाया, ऐसे कितनी बार आपने कहा है जीवन में, नहीं कहा है, और झगड़ा बहुत किया है। हरे कृष्ण। ये ठीक नहीं है, किसी ने बोला नौकर बहुत उल्टा काम कर रहा है, ये बर्तन तोड़ दिया, उसको डांट रही थी बेगम घर में जो थी मालकिन, शिकायत की ऐसे नौकर रखते हो घर में। वो हंसते हुए बोला ये इतना मूर्ख नहीं होता तो नौकरी थोड़ी करता, ये सेठ नहीं बनता। मूर्ख ही तो है ना, तभी तो नौकरी कर रहा है, नहीं तो दबरा तो सेठ नहीं बनी, तो इसके ऊपर गुस्सा करने से तुम अपना टाइम क्यों खराब कर रही हो, तो है ही मूर्ख तब नौकरी कर रहा है, जब नौकरी कर रहा है तो इसके ऊपर गुस्सा करने का कोई मतलब थोड़ी है। तुम अपने को नीचे इतना क्यों गिराती हो, तुम क्यों, तुम्हारा ठीक है ना, जो हो गया हो गया, तुम्हारे हाथ से टूटता तो क्या करते, आपके हाथ से जब बर्तन रोज टूट जाता है शीशे का तो कोने में फेंक देते, बच्चे ने बटोर दिया तो दम मत है, क्यों। इसलिए कहते हैं आत्म उपमेय न सर्वत्र, अपने से कंपेयर कर लो कि आपसे ये होता तो आप क्या करते। हरे कृष्ण। हाँ बोली,
बहुत याद आ रही थी तो आज सुबह आज भागवत क्लास में आपको साक्षात देखकर तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं।
हरे कृष्ण। तो आज तो ये बहुत बड़ा भक्त है, जो चाहता है वो होता है, इसकी शरण ले लो। अरे अब तो आप भगवान को चाहता तो भगवान मिल जाता, आप तो कहाँ आ गए। गोविंद राम जी। हरे कृष्ण। आपका इसके ऊपर कमेंट्री ठीक है। हरे कृष्ण। ایسی چیزیں کبھی جیون میں ہوتی ہیں تو آدمی کی آستھا اور شردھا بڑھتی ہے. تو بھگوان جس کے اوپر کرپا کرنا چاہتے ہیں ویسے اس کو ایسی تھوڑی سی جھلکیں کبھی جیون میں دکھاتے ہیں تاکہ بھگوان کے پرتی اس کی شردھا بڑھے. تو یہ وشیش روپ سے ایسی گھٹنا ہے بہت سے لوگوں سے سمے سمے کے اوپر ہوتی ہیں, لیکن ان کے اوپر ہوتی ہیں جن کے اوپر بھگوت کرپا ہوتی ہے کہ بھگوان کے نکٹ جانے میں ان کو اور آسانی ہو جاتی ہے, ان کا شردھا اور بھاونا بڑھتی. ہرے کرشن گووند رام دھنیہ واد. گرنتھراج شریمد بھاگوتم کی جے, شیلا پرمپرا کی جے, رادھے کا رمن کی جے, گور پریمانند ویشنو ورند کی جائے. ہری بول. ہرے کرشن. چلو بھائی دو پرشن پوچھنے والے دو میں آئیے. بھیا کیا بتایا تھا نام؟ وکاس. یہ ایک پرشن پوچھنے والے کا پرساد. بھائی گووند رام جی ہے آپ کا پرساد.
لوگ پرشن پوچھنا تو سیکھے کم سے کم.